विवर्धमान महान दिन विचरे हमारी ध्यान। प्रवृत्तानुसार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन शुभ परिणामाधिकार 128 पृष्ठ अपने साथ किताब में शास्त्र में 128वां पृष्ठ। ये अमृत चंद्राचार्य की टीका को अपन पढ़ना चाहते हैं। वर्तमान में टीका है, वैसे तो अपन ने इस गाथा पर काफी चर्चा की है, फिर भी अमृत चंद्र की टीका को एक बार फिर पढ़ना चाहते हैं। पाप बंध युक्त होने से, पर संबंध युक्त होने से, मिल गया, बाधा सहित होने से, विच्छिन्न होने से, बंध का कारण होने से और विषम होने से, वह इंद्रिय सुख पुण्य जन्य होने पर भी दुख ही है। यद्यपि वो इंद्रिय सुख पुण्य बंध पुण्य के उदय का कार्य है, फिर भी वो दुख है, जबकि पुण्य के उदय का कार्य सुख कहा जाता है। तो ये जो जगत की मान्यता है उससे बहुत अत्यंत स्पष्ट है, जो दो पंक्तियों में अभी अपन ने पढ़ी हैं, आगे की चार पंक्तियां भी वो दो ही पंक्तियों को दोहरा रही हैं कि इंद्रिय सुख पर के संबंध वाला होने से पराश्रयता के कारण पराधीन है, बाधा सहित होता हुआ खाने पीने और मैथुन की इच्छा इत्यादि तृष्णा की व्यक्तियों से युक्त होने से अत्यंत आकुल है। दो पॉइंट हुए कि वो एक बाधा सहित है और एक पर के संबंध वाला है। तो जो पर के संबंध वाला होता है उसमें 50 बाधाएं होती हैं। बाधाएं तो होती हैं, जैसे गाय भारत का एक बहुत पवित्र पशु माना जाता है और उसको काटने के लिए कत्लखाने खुले हुए हैं, तब भी उसकी नस्ल खत्म नहीं होती। माने जंगली जितने भी जानवर हैं वो शाकाहारी है ना, शुद्ध, तो वो उसको खाएं, मांसाहारी सब जानवर उसे खाएं। फिर जो आदमियों में जो जानवर, तो मैं नहीं कह सकता हूं, उनमें जानवर शब्द का अर्थ बहुत अच्छा होता है, ज्ञान में श्रेष्ठ, जान माने जानने वाले, जान माने ज्ञान और बर माने श्रेष्ठ है। तो क्यों ये गवर्नमेंट ने शेर को सुरक्षा प्रदान की है, शेर है, मोर है, पशु है, पक्षियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं, तो इनकी कोई हत्या करे यदि तो उसे सजा होती है बहुत बड़ी जबरदस्त। गाय को मार के खा जाओ तो कुछ नहीं, यदि ये कहो कि गाय को मार के नहीं खाना चाहिए तो आज तो वो भी अपराध हो गया है, क्योंकि आप उन लोगों का स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं जिन लोगों को अपना जो चाहे वो खाने का अधिकार है और वो अधिकार उन्हें भारत में आजादी के पहले से ही प्राप्त है। क्या और आप कह रहे होगे नहीं ये ठीक नहीं है, आप रोकते हो उन्हें, तो जैसे आपसे रोटी खाना रोके कोई शुद्ध सात्विक, तो जैसे आपका मन नहीं मानेंगे तो भी नहीं मानेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि गाय के इतने खाने वाले मौजूद हैं और शेर को जंगल का राजा, सबको खाए और शेर को कोई नहीं खाए। शेर का मांस किसी को खाते देखा है आज तक आपने? यदि वो खाने की कोशिश करेगा तो उसे मिलेगा। जो सबको खाए वो असुरक्षित है, उसे गवर्नमेंट को सुरक्षा देनी पड़ रही है, उसकी नस्ल खत्म हो रही है। यदि गवर्नमेंट इतनी सुरक्षा नहीं दे तो वो कहती है कुछ दिनों में دنیا سے سیدھے ہی اٹھ جائیں گے. اگر وشو کی گورنمنٹ دے رہی ہے اس سرکشا, یعنی شیروں کو دیکھنے کے لیے چڑیا گھر میں اپنے بچوں کو دکھانا ہے, جیسا ایک جانور تھا نا وہ ختم ہو گیا, کون سا ڈائناسور, ایسے ہی کبھی شیر ہو جائے گا جو صرف فوٹو میں دکھایا جائے گا, اس لیے گورنمنٹ نے اسے سرکشا پردان کی ہے. اور گائے کو, گائے تو اپنے آپ ہی سرکشت ہے, کوئی کتنا ہی کہہ رہا ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو ایسا کیوں ہے, اس کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, گائے کیوں سرکشت ہے, گائے کی نسل, اور شیر کی نسل کیوں اسرکشت ہے, سوچا کبھی آپ نے؟ گائے کا بھوجن بھاگتا نہیں ہے اور شیر کا بھوجن بھاگتا ہے, انتر سمجھ میں آیا نا؟ کیا گائے کی گھاس سامنے پڑی ہے تو شانتی سے کھائے, وہ گائے بھگ جائے گی دوڑ کے کہیں, یہ اسے چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو شیر کا ہرن جو بھی پشوؤں کو مارے کھاتا ہے وہ بھاگتا ہے, یعنی شیر کے پیر میں ایک کانٹا لگ جائے تو وہ گیا شیر, ختم بس ختم, کیونکہ ہاتھ پیر ایسے ہیں نہیں جو کانٹا نکال لے, وہ کانٹا لگ جائے گا پھر وہ چلنا پھرنا ہے تو سوج جائے گا, پھر انفیکشن ہو جائے گا, دھول مٹی لگے گی جنگل میں, اسے وہ بچ نہیں سکتا ہے تو پک جائے گا, وہ شکار کے پیچھے نہیں دوڑ سکتا. اب اسے بھوکوں مرنے کے علاوہ اسے کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے. اب سمجھ لو کہ اس کا کتنا کٹھن جیون ہے. جیسے گائے کے لیے گھاس ہے نا تو گائے نہیں رکھ سکے, لیکن گائے کا مالک تو گھر پر رکھ لیتا ہے سال بھر کا سرکشت, اور اپن منش تو اپنا گیہوں دو چار بوری گھر میں رکھ ہی لیتے ہیں نا, کھانے پینے کا انتظام کتنے دن کا, اب وہ تو رکھ نہیں سکتا, جب بھی اسے بھوک لگے گی تب ہی اسے تتکال کسی جانور کا شکار کرنے کو چاہیے, اور جب اس کی بدنامی ایسی ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس کیوں آئے گا, کوئی بھی جانور اسے دور ہی دور بھاگیں گے, تو اسے بھوجن ڈھونڈنا پھر اس بھوجن کو پکڑنا پھر کھانا, یہ اتنا کٹھن ہے کہ وہ اس کا جیون میں ذرا بھی ایک کہتا نا پہلے پرشن ٹوٹے نکھ رد کیسری, نکھ مانے ناخون اور رد مانے دانت, یدی کیسری مانے سنگ کے دانت اور ناخون ٹوٹ گئے تو وہ ختم بس, اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا, اس کے پاس زندہ رہنے کا کوئی اپائے نہیں ہے. ایک ہی اپائے ہے کہ وہ پرادھینتا سویکار کرے اور چڑیا گھر میں چلا جائے. اب سمجھے نا, جنگل میں نہیں رہے, آزادی سے نہیں رہے, آزادی بیچے تو شاید پیٹ بھر کھانا کچھ مل جائے, کیسے جیسا بھی ملے. تو جس کی سکھ سامگری پرادھین ہے اس کے سکھ کا کیا کہے, سمجھے نا, میں نے وہ جو بھگتا ہے نا بھوجن وہ پرادھین ہے, وہ اس کے آدھین ہے, اتنا انشچت ہے. تو یہ پانچ اندریوں کے وشیوں میں یہی تو بات ہے, ساکاری شدھ سنتشٹ کیوں رہتے ہیں, اس لیے کہ ان کے بالکل نراپد ہے ان کا معاملہ, شانتی سے رہ سکتے ہیں وہ. تو ابھی دیکھیے, اب میرے میں بہت بچ رہا کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ابھی مجھے سمجھانا ہے تو کچھ بولنا پڑے گا. دیکھو اسپرشن اندری کے وشے کی بات ہے, تو چونکہ اسپرشن اندری کے وشے کی پورتی کا جو سادھن ہے وہ سامنے, وہ بھی چیتن ہے, چاہے پتی ہوتا ہے پتنی ہو, دونوں ہی چیتن ہیں اور دونوں ہی پڑھے لکھے ہیں اور دونوں ہی آزاد ہو گئے ہیں اور دونوں ہی میں سوتنتر چنتن ہو گیا ہے, تو کیا دردشا ہو گئی امریکہ کی دمپتیوں کی؟ کیوں کیوں, تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سنجیو؟ کیوں, कि भाई पांच इंद्रियों के स्पर्श इंद्रिय के विषय के लिए दोनों के मन की अनुकूलता चाहिए ना, और वो होना इतनी आसान नहीं है, तो स्पर्श इंद्रिय का विषय भी उनके लिए कितना कठिन हो गया। फिर रसना इंद्रिय का लगाओ, ज्ञान इंद्रिय का लगाओ, तो पांचों इंद्रियों के विषय इनमें एक कठिनाई है, पराधीनता वाली। पहला जो शब्द है ना, कि वो पर से संयुक्त है, इसलिए वो दुख सुख होकर के भी दुख है। तो कितने दुख, कितने साथ में वो दुख लिए हुए हैं। यदि वो सुख उसे भोगना है तो उसके पीछे कितनी आफतें उसे भोगनी पड़ेंगी, ये उसकी कल्पना वो करके देखे। ये समझना है यदि आपको कि ये इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। अभी तक तुमको बोलना नहीं आ पा रहा, मैं क्या करूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, तन विषम। इसमें वही अक्षर ज्यादा कम है नहीं है, क्यों क्यों क्या गड़बड़ होती है। बस देखो इंद्रिय सुख बोलो थोड़ा दो, और फिर बोलो दुख नहीं सुख नहीं, बस हो गया काम। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। अब वो लड़के जिनने आज बोला था बोल के बताओ।
इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख,
तो दूसरा बोलो, दूसरा वाला लड़का।
इंद्रिय सुख सुख,
पहले ही तुम इतना बदन डाल देते हो उसमें। इंद्रिय सुख, पहले इंद्रिय पे बदन मत डालो, शांति से जल्दी बोलो। इंद्रिय सुख सुख,
इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, बंद का कारण दुखद परतंत्र है विचिन्न।
अब सुने ये वो पहला, यानी इसमें क्या, इस सुख में सुख नहीं। अब देखो सुख कह रहे और सुख नहीं, गुरुदेव इसका कैसा अर्थ करते। पहले सुख है कह के व्यवहार की स्थापना की, और फिर सुख नहीं कहकर निश्चय की स्थापना की, व्यवहार का निश्चय किया। यदि इंद्रिय सुख वो सुख नहीं है, तुमको यही समझाना है, तो उसे सुख कह क्यों रहे, क्यों? कि जिसे सारा जगत इंद्रिय सुख कहता है वो वास्तव में सुख नहीं है, दुख है। तो उन्हें ये कहना, ये सारा जगत कहता है, वो ये बताना है ना, वो इसी में आ जाता है कि इंद्रिय सुख हमने कहा, इसमें ये आ गया कि सारी दुनिया जैसे इंद्रिय सुख कहती है वो वास्तव में सुख नहीं दुख है। क्यों है कि अब मैंने बोला ना पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, अब एक एक का हिसाब लगाओ कि पर से संबंध है। तेरा पहला बोल क्या है कि पर से संबंध से युक्त है, यही भाषा है ना, दो दफे है। देखो परि में पाप संबंध, पर संबंध युक्त होने से इसमें है, और फिर नीचे इंद्रिय सुख पर के संबंध वाला होता हुआ पराश्रय के कारण पराधीन है। अब इसका अर्थ कर रहा हूं मैं कि अब इसमें ये पराधीन लगा हुआ है। अब पराधीन को तो तुलसीदास जी भी कह रहे कि पराधीन सपनहु सुख नहीं। ये क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जिसको तुम इंद्रिय सुख मान बैठे हो वो सुख नहीं दुख है, तो जो पराधीन है, और पराधीन में तो सपने में भी सुख नहीं होता है। ये जो हमारे इंद्रिय के भोग, नाराज मत हो जाना, अचेतन होते तो ज्यादा अच्छे थे ना, क्योंकि दो इच्छाओं से उन्हें जूझना नहीं पड़ता, दो मनों के बीच में उन्हें जूझना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? वो पर्स के संबंध से युक्त होना ये सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए, वो कह रहे हैं। अब हजार बाधाएं हैं, बाधा सहित है। देखो पहला लिखा परासहित है, कहें पराधीन, अब बाधा सहित होता हुआ अब वो व्याख्या करते हैं। खाने पीने और मैथुन की इच्छा इत्यादि तृष्णा की व्यक्तियों, व्यक्तियों माने प्रकट होना, व्यक्तियों से युक्त होने से अत्यंत आकुल है, आकुलता है। अपन ने कल सिद्ध किया था ना कि जब तक वो विषय भोग अपन ने किया, मैंने खाना खाया समझ लो, तो तब तक भूख जम के लगे तो उसका मजा है, और जब तक भूख लगी तब वो आकुलतामय है। आकुलता तो दुख का लक्षण है, सुख का लक्षण नहीं है। अभी पांच इंद्रियों पे घटाना अपने मन में, स्पर्शन इंद्रिय पे घटाना, रसना इंद्रिय पे घटाना, ज्ञान इंद्रिय पे घटाना, चक्षु इंद्रिय पे घटाना, कर्ण इंद्रिय पे घटाना, मन पर घटाना, वो भी तो एक इंद्रिय ही है ना। विच्छिन्न होता हुआ, क्या विच्छिन्न? क्या कि अभी हो गया, अब तो दो ही निपट गया, बाधा भी निपट गई और पर का दो समझो, दोनों का विचार भी मिल गया, मन भी एक हो गया, बाधा भी कोई नहीं रही, अब तो कोई झंझट नहीं है। अभी फिर कोई पूर्वज आ गया, अपने पिताजी आ गए, दादाजी आ गए, गुरुजी आ गए, और कोई कहे भैया फलाना है, तो बस फिर अब खाना खाना निकाला, खाना खाने से उठे क्या करे, घंटी बजाई, फोन बज गया, तो खाना ही नहीं खाने देता। अब पांच इंद्रियों के विषय पे लगाओ, खाने पे उतना आपको ख्याल में नहीं आएगा। आप समझे कि बीच में कोई आपके पूज्य पुरुष आ जाए कि जिनके सामने आपको वो विषय छोड़ना ही पड़े, और वो आए तो वो विच्छिन्न का उसमें बाधा खड़ी हो जाती है, विच्छिन्न है। पर के संबंध से युक्त है, बाधा से सहित है, विच्छिन्न है, विषम है। और कहे एक बोल पढ़ता हूं, देखो विच्छिन्न का अर्थ पढ़ूं, विच्छिन्न होता हुआ असाता वेदनी का उदय जिसे च्युत कर देता है, मैंने बीच में असाता वेदनी का उदय आ जाए, ऐसे साता वेदनी के उदय में प्रवर्तमान होता हुआ अनुभव में आता है, इसलिए विपक्ष की उत्पत्ति वाला है, उसे विपक्ष हमेशा मौजूद है, और बंध का कारण होता हुआ विषय भोग के मार्ग में लगी हुई रागादि दोषों की सेना के अनुसार कर्म रज के घन पटल का संबंध होने से, जिसके कारण परिणाम से दुस्सह है, और जिसका अंतिम परिणाम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, और विषम होता हुआ हानि वृद्धि से निरंतर भाव में हानि ही वृद्धि होती रहती है, भोगने के भाव में, पूर्ति संतुष्टि के भाव में ऐसा है, अत्यंत अस्थिर है, इसलिए वह इंद्रिय सुख दुख ही है। इस प्रकार यदि इंद्रिय सुख दुख ही है, अब देखो ये इतनी मेहनत के इंद्रिय सुख दुख है, ये क्यों काय के लिए की बनो, क्या आप वो छोड़ दें इसके लिए नहीं कि घबराना नहीं, वो तो छोड़ोगे तो जब जब साधु बनोगे, कोई दीक्षा लोगे, अभी तो छोड़ने वाले तो नहीं है, अभी तो तुम श्रद्धा में स्वीकार कर लो, तुमको ये लगता है कि अभी हमने ये मानी तो हमें छोड़ना पड़ेगा, वो तो मानते हैं कि चौथे गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान में ये नहीं छूटता है, और चक्रवर्ती जैसे इतने इतने भोग सामग्री वाले होते हैं, इसलिए आपको ये जल्दी घबराहट लगती है कि हमने इन्हें यदि इंद्रिय सुख को सुख नहीं माना और दुख नहीं माना, तो जैसे हम दुख से बचने की कोशिश करते हैं ऐसे हम सुख को छोड़ देंगे, और सुख का मतलब ये सब संपत्ति, ये कैसे छोड़ दें, तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो मानो ही नहीं, एक व्यक्ति आया घर लेट हो गया, तो पत्नी ने पूछा क्यों आज लेट क्यों हो गए। मैं कितनी एक घंटे से बैठी हूँ थाली पे लगाए, मेरा नियम है कि मैं तुमसे पहले खाना नहीं खाती हूँ, और मुझे तो सुबह से भूख लग रही, तुम तो नाश्ता कर गए थे, मैं तो किया ही नहीं था कुछ, और तुम्हें देर हो गई, क्या कहाँ थे। तो बोले अरे उससे झगड़ा हो गया। किससे झगड़ा हो गया, किससे लड़के आए हो। कि भूल को मेरा पड़ोसी दोस्त है ना, उससे झगड़ा हो गया। कि क्या हो गया। कि वो कहता था नालायक कि दो और दो पांच हो, चार होते हैं, और मैंने कहा कि दो और दो पांच होते हैं, समझना। अब इसमें झगड़ा हो गया। फिर क्या हुआ कि ये शर्त लग गई कि जिसकी बात झूठी निकले क्या वो झूठी बात वाला अपनी पत्नी को सामने वाले को दे देगा। ये शर्त लगा दी। वो पत्नी बोली कि तुमने क्या मूर्खता करी है, अब तुम मुझे खो दोगे, क्योंकि तुम्हारी बात तो सफेद झूठ है, दो दो पांच तो होते ही नहीं, होते तो चाह रही है, और तुम इस पर इतना बड़ा दाव लगा के आ गए। मैं परवाह नहीं करता, तू चिंता मत करे। क्यों नहीं करे, क्यों, तुमने शर्त लगाई है ना कि हार जाएगा। तो वो बोला कि हारूंगा तो तब, जब मैं ये मानूंगा कि दो दो चार होते। मैं मानूंगा ही नहीं, मैं तो दो दो पांच ही मानूंगा। कि तुम्हारी बात झूठी है कि झूठा बड़ा के लावर लावर, समझते हो, दोनों तो नहीं करने वाला। बोला हम शास्त्र में बता देंगे, सब जगह लिखा है कि पुण्य हे है, पुण्य हे है मुक्ति के मार्ग में, ये देखो दुख का प्रचुन सार निकालेंगे। नो, क्यों परवाह करते हो, मैं कभी हारने वाला नहीं हूं। क्यों, कि मानूंगा ही नहीं। अब क्या करें, हारूंगा तो तब जब मैं मानूंगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसी प्रतिज्ञा लेके आए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर किरण भाई, हमको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है कि भाई स्पष्ट, अत्यंत स्पष्ट लिखा, और क्या करें, और अनुभव में करके देख लो, अनुभव में करके देख लो। एक पॉइंट मैंने कल बताया था, और आप सब लोगों से याद रखने के लिए भी कहा था, और ये भी कहा था विद्यार्थियों से आज पूछ लेता हूं और आपसे कल पूछूंगा। पूछ लो, पूछ लो, क्या था बताओ, भूल गए, सब भूल गए। फिर बताता हूं एक दफे, सुनो उसे, फिर मैं बता के फिर तुमसे पूछूंगा कि बताने के बाद याद आ गया और अब तुम बता सकते हो कि नहीं। मैंने मुझे वो एक कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मुझे ये पता चल जाए कि वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया। आ जाए, मैं ये चाहता हूं बस, कि भाई कितना ही चक्रवर्ती जैसे पुण्य का उदय, इंद्र जैसे पुण्य का उदय हो, वो एक बिल्कुल पुण्यहीन सहरिया जिसके कुछ भी नहीं है, एक लंगोटी लगाने को नहीं है, खाने को कोई अच्छी चीज नहीं है, कि वो दोनों समान दुखी हैं। ये था है? हाँ, तन वेदना से दुखी, ये बता रहे थे कि तन वेदना से दुखी वे रमणी के विषयों में रमे, तो तन वेदना से वे दुखी हैं, तो दोनों समान दुखी हैं। क्यों राजेश जी, ख्याल में आ गई बात, अब तो सबको ही आ गई होगी, आ जाना ही चाहिए कि ये पांच इंद्रियों के विषय, चाहे वो अरबपति करोड़पति भोगे चाहे गरीब भोगे, इन दोनों को भोगने का भाव पैदा हो और खूब जम के उसकी इच्छा पैदा हो, तब उसको भोगने का रस मजा आता है। अच्छी भूख में पत्थर भी खाओ तो भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो ऐसे ही वो दोनों को, वो खाने की जो सामग्री जो है, भोग सामग्री, वो दोनों की कितनी हल्की हो, कितनी बहान हो, कितनी महंगी हो कितनी ही हल्की हो, लेकिन उस दोनों के प्रति वे दोनों ही इतनी तीव्रता से आकर्षित होते हैं। क्यों? और जब तक वो उपलब्ध नहीं होती है तब तक दोनों को जो दुख होता है वो डिग्री टू डिग्री नाप लो एक सा होता है। मिल लो दादी पूरी मानो तो क्या वियोग का दुख दोनों को एक सा होता है, संयोग का सुख दोनों को एक सा होता है, इच्छा का दुख दोनों को एक सा होता है। पांच इंद्रियों के विषयों में जब वो कहते हैं कि दोनों को एक से ही दुखी हैं, तो क्या सिद्ध करना था इसे उन्हें? ये सिद्ध करना है कि पाप के पुण्य के उदय वालों के समान, पाप के उदय वालों के समान पुण्य के उदय वाले भी दुखी हैं। कि ये नहीं सिद्ध क्या करना था, सिद्ध ये करना है कि पुण्य के उदय से वाले भी उतने ही दुखी हैं जितने पाप के उदय वाले दुखी हैं। तो पुण्य और पाप में अंतर क्यों करना है? और पुण्य पाप में अंतर नहीं है तो पुण्य और पाप का बंध करने वाले शुभ अशुभ भावों में अंतर क्यों हो? जब उनके सुख दुख में अंतर नहीं है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, तो शुभ अशुभ भावों में अंतर क्यों हो? ये करना है, बोलो ये। अब अपना वो बिंदु चल रहा है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो नीचे पढ़ता हूं। इस प्रकार यदि इंद्रिय सुख दुख ही है, मिल गया, तो फिर पाप की भांति पुण्य भी दुख का ही साधन है, यह सहज ही प्रतिफलित हो जाता है। देखा क्लियर है? इसके लिए मैंने वो कहानी सुनाई है आपको, दो दो सब पांच वाली। तो इतना स्पष्ट ऊपर से तर्क युक्तियां देते आए, इतना स्पष्ट आगम है, संस्कृत में है, प्राकृत में है, हिंदी में है, गुजराती में है, अब फिर भी वो कह गए हमने तो नहीं मानेंगे। क्या कह, हम और क्या कह सकते, हमारे पास और क्या है? ऐसा तो है नहीं हमारे पास जैसा पुरुष वालों के पास होता है। ये जो पहले भारत में जब सन 42 का युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, तो अंग्रेज लोगों को की सेना की कमी पड़ गई, आदमियों की सेना में, तो उनका हिंदुस्तान उनके अधीन था, तो कहा हिंदुस्तान से नए रंगरूट भर्ती करो और उनको ट्रेनिंग दो और उनको युद्ध में भेजना पड़ेगा। क्या समझ रहे ना? तो उनको कहा, अब गवर्नमेंट का ये कानून है कि उनको वो आदमी को ही सेना में भर्ती करना चाहिए जो अपनी राजी से भर्ती हो खुशी खुशी। तो वे गांव गांव में जाकर जबरदस्ती पकड़ के लाते थे, क्योंकि कोई आना चाहता नहीं, सब जानते थे कि जाकर सेना में लड़ने को भेजेंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा बेटा एक जवान बेटा है, तो कहते घर से एक बेटा हरेक को देना पड़ेगा, हरेक के दो चार होते थे ना, तो एक देना पड़ेगा, हमने अपने बचपन में वो भोगा है। जब वो पुलिस वाले आते थे गांव में, पूरा गांव बच्चों से खाली हो जाता था, जवानों से एक नहीं दिखता था, सब भाग जाते थे, छिप जाते थे, क्योंकि अब भी हाल जो उनके हाथ में आ गया तो उसे पकड़ के ले जाओ। बिल्कुल हमने आंखों से देखा है, देखा नहीं भोगा है, वहां ले जाते तो मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करते कि तू एक कह दे क्या? वो पूछता मजिस्ट्रेट कि तुम सेना में जाना चाहते हो? कि हां साहब। अपनी राजी से जाना चाहते हो? कि हां साहब। तो वो हां करके वो भर्ती हो जाता था, लेकिन वो तो जाना नहीं चाहता था, जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे। तो जब बहुत प्रेम से कहते इसके बंधन खोल दो, ऐसा होता ना, हथकड़ी डाले जज बयान नहीं ले सकता, उसे वहां पूरा खोलना पड़ता है, क्योंकि उसका दिमाग पे प्रेशर रहता है तो वो सही नहीं बोल सकता। तो सब खोल के और कहा तुम स्वतंत्रता से बताओ कि सचमुच तुम जाना चाहते हो, उसको थोड़ी सी आजादी मिलती तो कहते नहीं जाना चाहता था, मना कर देते, वहां जाके मना कर देते, अब क्या करें? वो जज तो समझता है तो सब है, वो पुलिस वाले समझते हैं, तो क्या कहता है, जाओ इनको थोड़ा और समझाओ। समझे ना, समझाओ माने बाहर ले जाओ और इसको राजी करके लाओ। यहां से आप समझाते हैं वो जाकर खूब पिटाई करते हैं, कहते तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे यदि तू नहीं हां करेगा, चुपचाप बोल वहां हां कर देगा जज के सामने, क्या तो हां साफ कर दूंगा, हां साफ कर दूंगा करके जा करके। फिर जाके कहता वो जज पूछता, क्यों तुम स्वतंत्रता से कह रहे हो, राजी से कह रहे हो? नहीं साहब मैं तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे वहां मौत दिखती। यहां तो पिटाई दिखती और वहां मौत दिखती, मरना कौन चाहता है? तो फिर मना कर देता। अब जज क्या करे, थोड़ा और समझाओ। तो जज बोलता था थोड़ा और समझा के लाओ, और फिर वो जाता, आखिरकार वो समझ जाता। तो ऐसी भर्ती होती थी, ये हमने देखी है, हमारे गांव के कई लोग ऐसे फंस गए और चले गए उसमें। हम तो बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए हम तो कह जा सकते। तो ऐसा तो हमारे पास समझाने का कोई उपाय है नहीं, क्यों कोई इस तरह से समझा सके, सामने वालों के पास है। अबे कभी कभी लोग भी करते हैं कि इनकी समझ में नहीं आया, जरा ला क्यों पंडित जी से आया क्या नहीं आया, नहीं तो थोड़ा और समझ हुआ है। इतना के भोगों का जो सुख है, इसे अपन सुख बोलते हैं ना, और जैसे मानते हैं कि पुण्य के उदय से जो मिलता है हमें, और उसके लिए हम इतने सारा प्रयत्न निरंतर करते हैं, जितना करते विद्वान ही प्रेरणा दे दे करके और समझाते हैं कि तुम ये करोगे तो रहेगा, ये मिलेगा ये मिलेगा। अभी कभी कभी हमारे जो मिशन के विद्वान भी हैं और हमारे विद्यार्थियों के मुंह से भी मैं ऐसा सुनती, बहुत पीड़ा होती है कि हमने ये सिखाया है वस्तु का स्वरूप ये है, ये पुण्य का लोभ दे रहे हैं, क्या होगा, सही नहीं है बिल्कुल। कि नहीं नहीं ऐसे कोई पैसा आता ही नहीं आए, अरे नहीं आए तो नहीं आए और आए तो आए, ये तुम्हारी संस्था कैसे चलेगी? अरे चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, हमें संस्था चलानी काहे को है, हमें तो इसलिए तो चलानी है कि हमें ये सिखाना है। यदि इसके विरुद्ध ही बात हो गई तो हमको काहे को चलाना है, क्या करेंगे हम चला करके, जितना आएगा सहज से जितने में शांति में रूखी सूखी खाके चलाएंगे, लेकिन हमको ऐसी प्रेरणा नहीं दिलाना है, क्या समझे, ऐसा नहीं समझवाना है कि वही में निमालो ये किन की बात कर रहे हैं। अभी निकाल के बताऊंगा, मैं 4 घंटा पढ़ता रहता हूं तब आके तुम्हारे सामने आता हूं, अब यहां निकालने का भी मुझे समझना है, क्या बोल रहे हैं मालूम क्या लिखा है इसमें, कि ये जो अंदर में पुण्य के उदय से ये चीज मिलेगी तो ऐसा होगा तो कि ये किनकी बात है, क्या लिखा किनकी बात है, कि देवगति बन कुंभेंद्रों की, कि नहीं इसमें लिखा अहिमेंद्रों की, इंद्रों की, जिसकी पैदा होते हैं भाई जी सर्वासिद्धि के देवों की, सौधर्म इंद्र की, उनकी बात, चौथे काल के शुभभाव वालों की ये बात है, पांचवें की तो है ही, ऐसा नहीं कि पांचवें की बात होगी, कि चौथे काल आएगा इसमें पढ़ना, तुम घर पर पढ़ने का काम कर लो तो मुझे निकाल के दिखाने की दिक्कत नहीं करनी पड़े, मैं खूब पढ़ के आता हूं, सोच समझ के आता हूं, जो मुझे बोलना है बताना है आपको, क्या कह रहे हैं कि ये चौथे काल में जो असली महान पुण्यशाली लोग हैं, आखिर उनको भी उस पुण्य के उदय में क्या मिलता है, भोग सामग्री, भोगने के लायक इंद्रियां, वो भी भोग सामग्री तो हो गई,
भोगी भोग सामग्री बढ़िया माल मसाला खाने को मिले और पचाने लायक पेट मिले, दो ही भोग सामग्री है कि नहीं है क्या? तो उनका भी वो सुख वो दुख ही है, और वो भी उनको भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कौन सी प्रक्रिया? जो अभी मैंने आपको बताई, ज्यादा मैं बोल नहीं सकता उस मामले में, ख्याल में आई ना, पांच इंद्रिय के भोगों की तरफ कितनी पीड़ा होती है उनको, जब तक वे भोग उपलब्ध नहीं होते हैं तब तक, तो वो पीड़ा दोनों को एक सी होती है। अब वो भोग मिल भी जाए तब भी कोई फिर उसका वर्णन करें तो फिर और अलग बात है, तो वो भी दुखी रूप होती है। अब कहराने के जमाने में तो मैं खुद ही करता था ये वर्णन, वो उसी हिसाब से कर देता हूँ दो मिनट। अब आजकल वो खत्म हो गया मेरा मामला। क्यों? कि जब खाना खाने बैठते थे गर्मियों के दिनों में, तो जब पंखा मंखा भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये नहीं थे, तो खाने बैठते थे तो पसीना आता जाता था, गिरता था, है? क्यों? आपको है कुछ अंदाजा? थोड़ा नहीं होगा, जो मेरी उम्र के होंगे उन्हें थोड़ा अंदाजा होगा कैसे खाना खाते वक्त भी क्या दुर्दशा होती थी, उसका मुझे बहुत पता है अच्छी तरीके से। तो मैं कहता था कि खाते वक्त भी कितना तुम्हें दुख नहीं हो रहा तो पसीना क्यों आ रहा? तो आंख में से आंसू टपक रहे कि मिर्ची खाई थी साहब। तो मिर्ची काय के लिए खाई थी? कि उसके बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो आंख में से रोते जा रहे, पसीना से लथपथ हो रहे, तो ये भोग का सुख है पांच इंद्रियों पे घटित करना। सब काम मेरे से मत कराओ, इतनी गर्मी इतनी सर्दी सब मालूम, उन्हें क्या कुछ नहीं था समझ में। अब आज वो उदाहरण बेकार हो गए कि सब एयर कंडीशन कमरों में खाने खाने को बैठना। अब हमको खाने के लिए भी चाहिए ना, तो अकेला माल मसाले ही नहीं चाहिए, वो डाइनिंग टेबल चाहिए, बढ़िया कुर्सी चाहिए, और फिर उस वक्त वो एयर कंडीशन कमरा चाहिए जब हम बैठ के शांति से एक कप चाय पी पाएंगे। चाय कैसी पियेंगे ना, दूध नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल कड़वी। या कोई आदमी जो गरीब आदमी तो पिए ही नहीं पाएगी चाय, एक करोड़पतियों की चाय ऐसी होती है। ये फाइव स्टार होटलों में जाते हैं ना, वो एक एक वहां जाके बैठ के एक एक चाय के 25-25 रुपया देते हैं, हैं? और बिल्कुल है मैं तो कहती सुन सुना करके कभी सुनी होगी, और फिर उसमें वो लेकिन बस एयर कंडीशन में बैठ करके अरे सुन। अब ये शादी विवाह में ऐसा होने लग गया, पागल पागलपन, शादी विवाह में ऐसे पागलपन हो गया। मेरी इज्जत है किधर? इसका नाम इज्जत है? काय की इज्जत है तेरी? कैसी इज्जत है? कि तूने खूब पैसा कमाया है दो नंबर का, महापापी है। ये परिग्रह वाले को पापी नहीं कहते, महापाप है क्या नहीं है मुझे बताओ? परिग्रह महापाप है क्या नहीं बोलो? मिथ्या तो परिग्रह है क्या नहीं है? मिथ्या तो महापाप है क्या नहीं है? काय की इज्जत? 800 रुपए की थाली, उसमें 8 रुपए का माल नहीं है, मुझे तो पागलपन दिखता। दादा अपनी भी कोई इज्जत है? मैंने कहा मेरी नहीं है इज्जत, तुम आई हो तुम संभालो, बताओ मेरी कोई इज्जत नहीं है, सचमुच बोलता हूं भाई, तुमको इसका अंदाजा नहीं है। एक जब मेरा ऐसा हुआ था, जब मैं बहुत मुझे ऐसा नहीं था, बहुत स्थिति थी, कुछ पैसा मैसा किसी का देना था, बोला पंडित जी तुम्हारी बहुत इज्जत है, मैं आकर के एक दिन में तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। धमकी दी उसने, तो 400 रुपया देने होंगे और नहीं दे पाए होंगे। बाबा जी सच्ची बात बता रहा हूं मैं कि तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। मैंने कहा है तुम क्या मिलाएगा, क्या करेगा? अरे पैसे से हमारी इज्जत है ही नहीं, हम तो वैसे ही सब हैं, हमको सब जानते हैं, मालूम हम किनकी संतान हैं? बताएं तुम्हें। हमारे पड़ोस में डांका लगा, डांका जानते हो? वो डाकू आते हैं रात में और मार मार के घर से तिजोरी खुलवा करके माल ले जाते हैं, तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में लगा। हम तो मुरैना में पढ़ते थे, हमारे मम्मी पापा दो ही थे घर में, और बगल के पड़ोसी के घर पर वो डाका पड़ा था, तो एक डाकू हमारे घर के सामने आकर और उसने घर के बाहर की सांकल लगा दी। तो हमारे पिताजी ने देखा हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो किवाड़ खोले तो बाहर की सांकल लगी थी, तो वो निकल नहीं पाए बाहर। और दरवाजे पर देखा एक आदमी खड़ा था बंदूक लिए। अब ये घबराए कि क्या करें क्या करें, तो घर में दूसरा कोई दरवाजा नहीं था, खिड़की नहीं थी कि भाग जाए। तो ये घर के ऊपर चढ़कर, जैसे होता है खपरेल वाले होते मकान, उस पर ऊपर चढ़कर हमारी माँ को ऐसा उठा के पिताजी ने ऊपर चढ़ाया और खुद चढ़कर और उसको भाग के पड़ोसी के घर में भाग रहे थे, चल रहे थे, वो देख रहे थे डाकू। तो वो आपस में कह रहे थे कि काहे को भागे, इनके पास क्या है, ये मुफ्त में भाग रहे, इनकी साकर तो इसलिए लगाई है कि जब बाहर निकल आए तो हमको दो चार चांटा मार के इन्हें बैठाना पड़ेगा कि चुप रहो डिस्टरबेंस होगा, इसलिए तो इनकी साकर लगाई बाहर से। ये काय को आ रहे हैं, मैं कहा हमारी तो इतनी इतनी इज्जत है, डाकुओं में भी इतनी इज्जत है हमारी, तो तुम हमारी क्या इज्जत खराब करेगा कि इनके पास पैसा नहीं है, क्या क्या करेगा, हमारा नहीं दिया। लोग पूछेंगे क्या है पंडित जी क्या हुआ, कहां साहब नहीं है, नहीं दे पाए इनको, दे होंगे दे देंगे, क्यों, वो समझता था कि हमारी इज्जत चली जाएगी। हमने कहा हमारी कोई इज्जत बज्जत नहीं, हमारी इज्जत हमारे ज्ञान से है, जिस दिन हमारा प्रवचन बिगड़ जाएगा उस दिन हमारी इज्जत जाएगी, जिस दिन हमारे करेक्टर में दाग लग जाएगा उस दिन हमारी इज्जत जाएगी, जिस दिन हम किसी का एक नया पैसा अवैध तरीके से लेंगे उस दिन हमारी इज्जत जाएगी। हमारी इज्जत हमारे कैरेक्टर से है, हमारे ज्ञान से है, हमारी इज्जत इस तरीके से, हमारी इज्जत, हमें ऐसी इज्जत नहीं चाहिए, ये वस्तु का स्वरूप है। जिसको तुमने इज्जत में इज्जत बना रखी वकील साहब, कोई दम नहीं है तुम्हारी इस इज्जत फिज्जत में, कैसा बहुत पैसा हो गया है, वो कोई बात नहीं है, किसी को नहीं देना है तो लड़की को दे दो, वो करोड़पति बन जाएगी, इस पागलपन में खर्च करने की क्या जरूरत है, है? बोलो सोचो सच्ची, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं समझता हूं, बिल्कुल मुझे को और कोई डर नहीं है मुझे किसी का, क्या करना मुझे, क्या करना किसका, क्या लेना देना, लेकिन उससे क्या लेना देना, परिग्रह है, पाप है स्पष्ट। देखो अपन कहां पढ़ रहे थे, उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इंद्रिय सुख का स्वरूप आचार्य अमृतचंद के समान ही स्पष्ट करते हैं, किंतु साथ में इंद्रिय सुख के प्रतिपक्षी अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप भी समझाते हैं। ये अमृतचंदाचार्य की बात थी, जयसेनाचार्य ने क्या किया, इंद्रिय सुख का स्वरूप बताया तो साथ में फिर वो अतीन्द्रिय सुख भी बताया कि अपने सम्य दृष्टियों को वो अतीन्द्रिय सुख भी होता है ना, फिर अपनी अपनी भूमिका के अनुसार यो चिंत दिन में फिर रही दिन अकथ जो आनंद लहो सो इंद्र और नरेन्द्र व अहिमेंद्र की नाही कहो। और यहां तो सर्वज्ञ की बात चल रही, तो जिन सर्वज्ञों के जो वो अतीन्द्रिय आनंद होता है तो उसका भी स्वरूप उन्होंने बताया है, कितना फर्क डाला है। इनने तो अकेले इंद्रिय सुख की क्या दशा है, ये सब एक से ही हैं, इसलिए उसका पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, इनको समझाना तो सिर्फ इतनी बात है, एकाए को समझाना ये बात, इसलिए कि तुम जैसे पुण्य के पीछे पागल हो रहे हो ना, ये पागलपन थोड़ा कम हो जाए। तुम पागलपन कह रहे हो, हम क्या करें, शास्त्र में लिखा है, मिथ्यात्व को पागलपन लिखा नहीं लिखा, बोलो, मिथ्यात्व के उदय से जिसमें हमारी इसमें उपादेय बुद्धि है, इसके लिए हम इतना महत्वपूर्ण मनुष्य भव इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं इनके लिए, और इन्हें लोक की दृष्टि से जिन्हें सुख कहते हैं वो लौकिक सुख में तो वो हमें वो भी तो नहीं मिला, पूरी जिंदगी निकल गई, ख्याल में आई ना, सब जोड़ जोड़ करके अरबपतियों में भी कि कुछ भी तो नहीं मिला। तो हम बता रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं छोड़ा रहे, हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम ये छोड़ दो। आदिनाथ ने भरत चक्रवर्ती से नहीं कहा था हम तुमसे क्यों कहेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी असलियत समझ लो, ये सुख नहीं है, इसमें से उपाधेय बुद्धि निकाल दो। श्रद्धा के लेवल पर, सम्मा दर्शन के लेवल पर तो अकेली श्रद्धा सुधरती है, और उसके उनके बराबरी पर जो चारित्र होता है वो बहुत मर्यादित है कि जिसमें आपको कोई बाधा खड़ी नहीं होगी। आप अनुवृत्त लोगे तो आपको मर्यादा में लेना पड़ेगा, यदि अनुवृत्त नहीं लिए तो चक्रवर्ती हो जाओ, क्या है कहा शास्त्र में, कहां रोक है, बोलिए। होते ना सहायक सम्मति चक्रवर्ती होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो। अब एक बात और कह देता हूं, समय तो हो गया। एक ऐसा आ जाता पूजा में, भजे जो अष्टम वर्ष कुमार धरे अनुवृत्त महासुखकार, कि जब पारसनाथ भगवान 8 वर्ष की उम्र के हुए तो उन्होंने अनुवृत्त धारण किया, कुछ दम नहीं है, घबराना नहीं। तीर्थंकर चक्रवर्ती जो ऐसे महापुरुष होते हैं वे अनुवृत्त नहीं लेते हैं, शास्त्र की बात यह है, ले सकते नहीं है। बताओ क्यों नहीं ले सकते हैं? भरत चक्रवर्ती अनुवृत्त लेता, कैसे लेता बताओ? परिग्रह का परिमाण करना पड़ता ना उसे, तो परिग्रह परिमाण में कितनी पत्नियां रखता और कितनी छोड़ता, 96,000 थी, क्यों है? अपन को अनुवृत्त लेना हो तो अपन को कितनी पत्नियां छोड़नी पड़ेंगी, बोलो बताओ। इतने पंडित कैसे पंडित हो भाई, एक पत्नी जो हमारी विवाहता है वो तो हम रख ही सकते हैं, और बाकी छोड़ना है और दूसरी है ही नहीं, तो हमें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब उस चक्रवर्ती के 96,000 है वो कितनी रखे, जब जितनी है उतनी रख लो बाकी छोड़ दो। वो कह मैं 96,000 पत्नियां रखी, अब मैं नई शादी नहीं करूंगा, लोग हंसेंगे ना। तो कितने 48,000 छोड़ दें, सिलेक्शन कैसे होगा, किनको छोड़ें किनको रखें? चेतन परिग्रह में ऐसा नहीं होता, चेतन परिग्रह में या तो पूरी छोड़ो या पूरी रखो, समझ गए ना, ऐसा 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 नहीं इतनी रखी तो वो अनुवृत्त ले ही नहीं सकता। और इतने भी उग्र पुरुषार्थी होते हैं कि अनुवृत्त तो किस्तों का काम है, जो गरीब आदमी होता है पैसा नहीं है, अब इनकम है उसके आधार पर किस्तें बांध देते हैं कि ऐसे ऐसे छोड़ दो, तो ये तो किस्तों में जो गरीब लोग चुकाते हैं वो तो इतने सामर्थ्य भाग्य धनी होते हैं कि भरत चक्रवर्ती के मन में आ गई तो एक सेकंड में सब छोड़ दिया और अंदर में चले गए और केवल ज्ञान पा लिया। वो काय को अनुवृत्त लेंगे, अनुवृत्त तो प्रैक्टिस का नाम है, शिक्षा वृत्त में बोलते हैं तो मुनि धर्म की शिक्षा लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। मालूम युद्ध में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते हाथी पर बैठे बैठे वैराग्य हो गया तो उतर के जागे दीक्षा ली, एक दिन प्रैक्टिस नहीं करी थी, कुछ ट्रेनिंग नहीं ली थी, क्यों? कोई दीक्षा देने वाला नहीं मिला तो भगवान की मूर्ति के सामने दीक्षा ली, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पाके मुख चले गए। अब उनसे कहें बेक किस्तों में ले लो, किस्तों में ले लो, आप हमारे फलानी मशीन कपड़ा धोने की मशीन किस्तों में ले लो, सेठ जी किस्तों में ले लो, तुझे ले लें किस्तों में, हमें हमको किस्तों में क्या लेने की जरूरत है? ये हमारे पीयूष बोलता है, ये बोलता साहब 5 वर्ष में अपन किस्तों में ले लेंगे, किससे? जो किस्तों में दे उससे हमें लेना ही नहीं है, क्यों? बेचारा गरीब गरीब होगा तो इकट्ठी नहीं चुका सकता है, तब तो किस्तों में देगा। अरे जिसके पास हो उससे लो ना, काय की किस्त है? बोलो, किस्तों का प्रस्ताव रखे तो वो रखे, हम काय को किस्तों का प्रस्ताव रखें, हम ये कहते ही नहीं है कि साहब मेरे पास इकट्ठा देने को नहीं है तो जितना है उतना ही दो, बाकी तब जब दे देना कि साहब आप तो किस्तों में लिख लें, हम नहीं प्रेरित करेंगे। वो चक्रवर्ती को दीक्षा दें और तुम कहे अभी एक व्रत ले ले, तुम एक व्रत ले ले, एक व्रत ले ले, क्यों ना हम अनुव्रत ले सकते हैं, ना हम महाव्रत ले सकते हैं, ना हम मिथ्यात्व छोड़ सकते हैं, और थोड़ा व्रत ले लियो, बस मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, इनमें क्या दम है इन व्रतों में, ये तो महिलाओं के काम है, घबराना नहीं। हजारों व्रत, ये व्रत, ये व्रत, अरे व्रत तो हमारे दो ही होते हैं, बस अनुव्रत और महाव्रत, और कोई व्रत नहीं है। दो कषाय का अभाव करो, अनुवृत्ति हो जाओगे, बुद्धिपूर्वक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत गहराई से अध्ययन करता हूं, सोचता हूं, समझता हूं और फिर बोलता हूं, और अपने जीवन के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। अब मैं 80 वर्ष की उम्र में तुम्हारे लिए क्यों करूं कुछ, अब मैं अपने लिए जो कुछ करता हूं वो माल तुम्हें चाहिए हो तो ले लो, भरोसूंगा अंत तक है, बिल्कुल नहीं जी। वह से मेरे लोग बोलिए साहब आप रिटायर्ड कब हो रहे, सच्ची बोलता हूं मैं, ऐसे भी लोग हैं बहुत लोग, आप रिटायरमेंट कब होगे, रिटायर कब होगे। मैंने कहा कैसे कैसे रिटायर करना है तुझे, जिससे तुम लोग रिटायर्ड होते हो उसमें से तो मैं 30 वर्ष की उम्र में हो चुका, समझे ना, कि मुझे नहीं पढ़ाना कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, अब तो मैं अमृतचंद पढ़ाऊंगा। अब तुम अमृतचंद से रिटायर करना चाहते हो मेरे को, आप समझ रहे ना, अरे जिस काम के लिए रिटायर हुआ जाता है वो तो मैं 30 वर्ष की उम्र में हो चुका, समझ गया, अब ये तो मैं अंतिम समय तक नहीं होऊंगा। देखो ऐसा होने वाला नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं मैं मुनि दीक्षा ले लूं तो फिर तो होगे, अरे फिर भी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुनिराज नहीं दे सकते उपदेश, नहीं देते हैं उपदेश, कौन मुनिराज रिटायर्ड हो गया उपदेश देने से, कौन कुंड कुंड हो गए थे, कौन कौन हो गया था, जो मुनिराजों को भी जिससे रिटायर्ड होने की जरूरत नहीं है, शांति जी दिलीप भाई, उन कुछ से तुम मुझे रिटायर करना चाहते हो, ऐसा मैं कोई रिटायर फिटायर होने वाला नहीं हूं, मैं जब तक मेरा दम रहेगा मैं ये तत्व ज्ञान समझाऊंगा, समझाऊंगा और समझाऊंगा।
सहजानंदी सो